नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में ऊर्जा संकट सुरक्षा का कोई संकट नहीं है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया। इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं।
श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न देशों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क में है और जहां भी संभव हो स्रोतों से तेल और गैस की आपूर्ति जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय पश्चिम एशिया से सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने पश्चिम एशिया में अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। इस संघर्ष से ऊर्जा संकट बढ़ गया है। तेहरान के कई जिलों में विस्फोटों की सूचना मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख फातेह बिरोल ने कहा है कि इस संघर्ष के 4वें सप्ताह में प्रवेश करने के बाद से क्षेत्र भर में 40 तेल और गैस प्रतिष्ठानों को काफी नुकसान हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा संकट 1970 के दशक के तेल संकटों से भी अधिक गंभीर है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर रखा है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात में हवाई सुरक्षा बलों ने हाल के घंटों में देश की ओर दागी गई कई मिसाइलों को विफल कर दिया है। लेबनान के दक्षिणी मोर्चे पर इसराइली सेना ने महत्वपूर्ण कश्मीर पुल को नष्ट कर दिया है। लेबनानी प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसे आपराधिक आपदा करार दिया है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने आज कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री, विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री पार्क सोखोन से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बातचीत में दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर विचार और पारित कराने के लिए चर्चा हो रही है। इसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के डॉ. अमर सिंह ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा दी गई कर छूट का लाभ केवल कुछ चुनिंदा संस्थानों को ही मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के अंतर्गत केरलम को लगभग 312 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस निधि का उपयोग नहीं किया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस निधि की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब संबंधित राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। इन दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान अगले महीने की 9 तारीख को एक ही चरण में होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 26 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इन्हें वर्ष 1931 में आज ही के दिन लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश की पैरा एथलीट किपा मेरो ने ओडिशा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला भाला फेंक F12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं तेची मेटा ने महिलाओं के 400 मीटर T13 वर्ग में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।